विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। हम गद्य कैसे पढ़ें, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम आम जीवन में बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह गद्य कहा जाता है। हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आम बोलचाल में जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं वह गद्य है। साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते आपको इसकी गहराई को समझना होगा, इसके मूल तत्वों को समझना होगा, इसकी विभिन्न विधाओं को समझना होगा और गद्य कैसे पढ़ा जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समझ सकें और परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर सकें, यह जानना भी बहुत जरूरी है। गद्य के समझने के लिए सबसे जरूरी है कि इसके विपरीत कविता के बारे में हम जानें। पिछले पाठों में हमने कविता के बारे में चर्चा की थी और आपने देखा था कि कविता की भाषा संश्लिष्ट होती है और कविता बिंब ग्रहण कराती है, उसमें सीधे सीधे बातों को नहीं कहा जाता, लेकिन उसके विपरीत गद्य की भाषा बहुत सरल होती है, सहज होती है और बोधगम्य होती है, अर्थात हम आसानी से समझ सकते हैं। आज अनेक विधाओं को आप पढ़ते हैं, जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, संपादकीय, ये सभी गद्य की विधाएं हैं। इनके बारे में भी हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षार्थियों में बताना चाहूंगा कि गद्य का स्वरूप क्या होता है, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले काव्य कविता का प्रसार हुआ और गद्य का असल में केवल बोलचाल की भाषा में ही प्रयोग होता था। ज्ञान विज्ञान, इतिहास आदि सब कुछ काव्य में लिखा जाता था। इसीलिए आप देखेंगे कि जो संस्कृत वाङ्मय है या हिंदी का जो प्रारंभिक काल है उसमें आपको कविताएं मिलेंगी। गद्य का स्वरूप भारतेंदु युग से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। गद्य के विकास को हम देखें तो जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य को चार कालखंडों में विभाजित किया गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, और इन्हीं कालखंडों के आधार पर आपको हिंदी गद्य के विकास को समझना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि भारतेंदु युग के बाद गद्य का वास्तविक रूप सामने दिखाई देता है, और उसके पहले अगर हम देखना चाहें सरकारी स्तर पर, तो आप शायद जानते हो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी और अंग्रेजों ने पहली बार हिंदी के विकास के लिए योजना बनाई और उस समय प्रोफेसर थे गिल क्राइस्ट, उन्होंने खड़ी बोली में हिंदी गद्य को विकसित करने की योजना बनाई और इसके लिए कई रचनाकारों को चुना गया जिनमें चार प्रसिद्ध हुए उस समय जी। लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, सदासुख लाल और ईशा अल्लाह खां, ये चार प्रमुख रचनाकार उस समय चुने गए और जिनको यह दायित्व दिया गया कि पुस्तक लेखन करें और हिंदी गद्य का व्यवस्थित विकास करें। लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर नाम की पुस्तक की रचना की, सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की, सदासुख लाल ने सुख सागर की और इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी। तो इस प्रकार से आप समझें कि 1800 ईस्वी से गद्य का शुभारंभ हुआ और इन रचनाकारों ने उसकी पृष्ठभूमि तैयार की। अगर हम संस्थानों का योगदान देखें, बहुत सी संस्थाएं उस कालावधि में सामने आई, आप जानते भी हैं ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन संस्थाओं ने धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए हिंदी गद्य का प्रयोग किया। राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते हैं
जी।
उन्होंने वेदांत के सूत्रों का खड़ी बोली में अनुवाद किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए अनेक ग्रंथ लिखे, जैसे सत्यार्थ प्रकाश आदि। तो इस प्रकार से धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा। अगर दूसरी ओर आप देखें तो बाइबल का अनुवाद भी हिंदी में किया गया और ईसाई पादरियों ने भी हिंदी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा अगर हम देखें पत्र पत्रिकाओं का योगदान, सबसे पहली पत्रिका कलकत्ता से उदंत मार्तंड निकली और उसके बाद बंगदूत, बनारस अखबार, सुधाकर आदि बहुत रचनाएं पत्र पत्रिकाएं उस समय आई जिन्होंने हिंदी को एक स्वरूप प्रदान किया और हिंदी का प्रसार किया। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में किस प्रकार गद्य का प्रसार हुआ। इस काल में शिक्षार्थियों बहुत से रचनाकार ऐसे हुए जिनके बारे में आपको जानना महत्वपूर्ण होगा। भारतेंदु हरिश्चंद के अलावा बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, ये बहुत से ऐसे रचनाकार हुए जिन्होंने नाटकों के माध्यम से, कहानी और उपन्यास के माध्यम से गद्य साहित्य की रचना की। उसके बाद द्विवेदी युग का काल आया जब भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया गया, अर्थात उसमें शुद्धता का प्रावधान किया गया और इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है जिन्होंने व्याकरण की पुस्तकों का लेखन किया और शुद्ध और सरल हिंदी लिखने की कला का निर्माण किया जो आगे की पीढ़ी के लिए बहुत ही कारगर हुआ। द्विवेदी काल में बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलाब राय, अध्यापक पूर्ण सिंह, बहुत से रचनाकार हुए। इतिहास जब आप पढ़ेंगे हिंदी गद्य का तो उसमें सारे रचनाकारों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। यहाँ संक्षेप में आपको यह बताया गया कि हिंदी गद्य का उत्तरोत्तर विकास कैसे हुआ, उसका शुभारंभ कैसे हुआ। आगे चल के जैसे हिंदी कविता का विकास हुआ उसी तरह से छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन साहित्य आदि अनेक पड़ाव आते रहे और हिंदी गद्य का उत्तरोत्तर विकास होता रहा, जिसमें आपने बहुत से रचनाकारों का नाम सुना होगा, जैसे प्रेमचंद की कहानियां आपने पढ़ी होंगी, जयशंकर प्रसाद ने भी कहानियां लिखी, महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखाचित्र बहुत प्रसिद्ध हुए, जैनेन्द्र की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार से रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे बहुत से निबंधकार हुए और अज्ञेय ने सुंदर कहानियों और उपन्यासों की रचना की, नामोर सिंह ने आलोचना साहित्य का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार से अगर आप देखें तो 1800 से जो यात्रा शुरू हुई वह यात्रा अभी भी चल रही है और आज अनेक विधाओं में गद्य रचना की जा रही है। इन पर हम थोड़ा विस्तार से बात करते हैं कि गद्य की कौन कौन सी प्रमुख विधाएं हैं जिनमें आज विभिन्न प्रकार की रचनाएं हो रही हैं। इसमें सबसे प्रमुख है शिक्षार्थियों कथा साहित्य। कथा साहित्य का अर्थ होता है उपन्यास, कहानी और लघु कथा। इनके बारे में आप संक्षेप में जानते होंगे। कहानी में जैसा कि आप जानते हैं, जीवन अथवा समाज की किसी घटना का सुंदर वर्णन किया जाता है और आप सभी को कहानी सुनना और पढ़ना प्रिय लगता होगा। इसमें घटना और पात्रों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेमचंद की कहानियां, प्रसाद की कहानियां या अगले की कहानियां आपको बहुत ही प्रिय होंगी। आप YouTube पे भी जाकर या गूगल करके बहुत से रचनाकारों को, हिंदी साहित्य कोश है उसमें जाकर आप इन कहानियों को पढ़ सकते हैं। उपन्यास की बात अगर हम करें तो उपन्यास में जीवन और समाज की घटनाओं का वर्णन तो होता ही है, लेकिन उसका विस्तार बहुत ज्यादा होता है। उसमें जीवन के लंबे समय की घटनाएं होती हैं, उसका फलक बहुत बड़ा होता है। आप पढ़ेंगे इलाचंद्र जोशी, भणेश्वरनाथ रेणु की आंचलिक, उनके आंचलिक उपन्यास है। शिव प्रसाद सिंह ने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे हैं। कृष्णा शोभती, भीष्म साहनी आदि बहुत से रचनाकारों के को आप पढ़ सकते हैं। उपन्यास में आपके विराटा की पद्मिनी दी हुई है, जो कि एक ऐतिहासिक और काल्पनिक नाटक है, काल्पनिक उपन्यास है। आप आगे के कार्यक्रमों में उसके बारे में भी सुनेंगे। नाटक का जहां तक सवाल है, नाटक एक दृश्य विधा है जिसमें संवादों के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत किया जाता है। आम बोलचाल की उसमें भाषा होती है। आजकल आप देखते होंगे जगह जगह नुक्कड़ नाटक खेले जाते हैं जिसमें सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन किया जाता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में है, जिसके जिस संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विधा निबंध की है शिक्षार्थियों। निबंध को गद्य की कसौटी भी माना गया, अर्थात एक अच्छा निबंध लिखना वास्तव में दुर्लभ कार्य है, क्योंकि निबंध का अर्थ ही होता है कि बंधन से रहित होना। अर्थात किसी विषय पर जब आप लिखने लगें और आपके विचारों पर कोई बंधन न हो तो वह रचना निबंध कहलाती है। इसके बहुत सारे भेद किए गए, जैसे ललित निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध। अगर निबंधकारों की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र से शुरू हो जाता है, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी
जी।
और आज के रचनाकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, इन लोगों ने श्रेष्ठ निबंधों की रचनाएं की हैं। आपके पाठ्यक्रम में भी कई निबंध दिए गए हैं। जो अभी एक हमने एक था पेड़ और एक था ठोट पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके बाद थोड़ा हम जान लेते हैं कि जो नवीन विधाएं हैं साहित्य की, उनका स्वरूप क्या है। जैसे एक महत्वपूर्ण विधा यात्रा वृत्तांत है। शिक्षार्थियों, यात्रा वृत्तांत में लेखक किसी भी देश में या पहाड़ी स्थान पर या अन्य स्थान पर जब यात्रा करता है तो इस विधा के माध्यम से वह अपने अनुभवों को व्यक्त करता है। यात्रा के दौरान की कठिनाइयों को भी बताता है, रोमांचक अनुभवों को भी साझा करता है और उसके साथ साथ उसमें कोई न कोई जीवन दृष्टि भी आपको दिखाई देगी।
जी।
अगर आप प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत देखना चाहते हैं तो राहुल संस्कृत्यायन का मकर शास्त्र एक प्रमुख ग्रंथ है। अगे का करे या यावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत बहुत प्रसिद्ध है। उसके अलावा विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव आदि ने सुप्रसिद्ध यात्रा साहित्य की रचना की। आपके पाठ में मोहन राकेश का आखिरी चट्टान नामक यात्रा वृत्तांत है। एक महत्वपूर्ण और विधा है संस्मरण की। संस्मरण में हम किसी व्यक्ति या स्थान का स्मरण करके शब्दों के माध्यम से उनके बारे में एक पूरा चित्र प्रस्तुत करते हैं। और संस्मरण तभी लिखा जा सकता है जब उस व्यक्ति या स्थान से अपनी आत्मीयता हो, घनिष्ठता हो, क्योंकि उसमें अपनी अनुभूत स्मृतियों और घटनाओं के माध्यम से अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है। तो संस्मरण विधा के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करें, उसमें बनारसी दास चतुर्वेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर आदि बहुत सारे रचनाकार हैं जिन्होंने संस्मरण लिखे हैं। महादेवी के बारे में जैसे मैंने बताया, वह एक प्रसिद्ध संस्मरणकार हैं। इसके अलावा एक विधा के रूप में प्रसिद्धि हुई है व्यंग्य की। वैसे तो व्यंग्य और रचनाओं में भी आपको मिलेगा
जी।
लेकिन आज के समय में व्यंग्य का इतना विस्तार हुआ है कि उसे एक विधा के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। व्यंग्य में होता क्या है? असल में समाज में बहुत सी बुराइयां फैली हुई हैं। उन बुराइयों पर कटाक्ष करना रचनाकार का एक महत्वपूर्ण धर्म है। वह व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहता है, विसंगतियों को दूर करना चाहता है और इसके लिए वह व्यंग्य शैली को अपनाता है। जैसे आप अगर अंग्रेजों के समय की रचनाओं को देखें, बाल मुकुंद गुप्त की एक प्रसिद्ध रचना शिव शंभु के चिट्ठे हैं, जिसमें पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों पर कटाक्ष किया गया, क्योंकि सीधे सीधे वे अंग्रेजों की आलोचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अन्य तरीके से दूसरी शैली में अपनी बातों को व्यक्त किया। आज के रचनाकारों में हरिशंकर परसाई का नाम शिक्षार्थियों में बहुत प्रसिद्ध है। उनकी एक रचना पीढ़ियां और गिट्टियां भी आप अपने पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। शरद जोशी प्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए हैं, उसके अलावा गोपाल चतुर्वेदी आदि बहुत सारे रचनाकार हैं। एक अन्य विधा को हम देख लेते हैं, संपादकीय। आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते होंगे और बीच का जो पृष्ठ होता है उसमें उसे संपादकीय पृष्ठ कहा जाता है, जिसमें संपादक तत्कालीन जो समस्याएं या घटनाएं होती हैं उस पर अपना विचार व्यक्त करता है और उन विचारों को पुष्ट करने के लिए वह तर्क भी देता है
जी।
तो यह संपादकीय जो विधा है उससे अखबार की जो दृष्टि है उसका पता लगता है और साथ ही साथ एक आपके मन में विचार किसी घटना के बारे में पैदा होता है। तो यह बहुत ही सशक्त विधा के रूप में सामने आई है। धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, विद्यानिवास मिश्र आदि बहुत से लोगों के संपादकीय पढ़ सकते हैं आप। अब हम एक अन्य विषय को लेते हैं, गद्य का महत्व। आप गद्य के अनेक पाठ पढ़ेंगे, आपकी पुस्तक में जो करीब दस पाठ है गद्य के, तो उन पाठों में क्या महत्व है यह समझना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया था कि गद्य के माध्यम से हम विचारों को आसानी से संप्रेषित कर पाते हैं, तो गद्य की जो भी रचनाएं आप पढ़ेंगे उसमें आप अपने मन के भावों को जोड़ सकते हैं, अपने विचारों से तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं और आप उन रचनाओं को पढ़कर गद्य में अपनी रचनाएं लिख सकते हैं, अर्थात आप में सृजनात्मकता का भी विकास होगा। और साहित्य के अलावा और अन्य जितने भी विषय आप पढ़ते हैं, इतिहास, विज्ञान, गणित, सब में आपको गद्य मिल जाता है। और अगर आपकी भाषा पर पकड़ है तो आप विषय को आसानी से समझ सकेंगे, इसलिए विद्यार्थियों के लिए गद्य को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसके अवयव को देखें कि गद्य के कौन कौन से तत्व होते हैं, तो मुख्य रूप से तीन तत्व हम देख सकते हैं। पहला तत्व है कि विचार तत्व, विचारियों किसी भी गद्य रचना में विचार की प्रधानता होती है, चाहे वो निबंध हो, कहानी हो, उपन्यास हो, क्योंकि रचनाकार जब भी किसी रचना की सृष्टि करता है तो वह अपने सामाजिक परिवेश को सामने लाता है और इसके अलावा वह अपने समय की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उन पर टिप्पणी करता चलता है। वह केवल रचना मनोरंजन के लिए नहीं करता बल्कि उसमें विचारों की गहराई भी होती है
जी।
वह तर्कों को भी सामने रखता है, विभिन्न दृष्टिकोणों को आपके सामने रखता है और इस प्रकार आपका जो चिंतन का क्षेत्र है उसका विस्तार होता है। दूसरा तत्व भाषा है। आप जानते हैं कि भाषा के माध्यम से ही विचारों की अभिव्यक्ति होती है, तो जैसे विचार होंगे वैसे ही भाषा भी होगी। जैसे विषय वस्तु होगा उस तरह की भाषा होगी। हर रचनाकार की शिक्षार्थियों भाषा अलग होती है, उसमें आपको अंतर नजर आएगा भाषा और शैली में, इसलिए उसमें आप देखेंगे कि शब्दों का चयन, लोकोक्तियों या मुहावरों का प्रयोग, इन सब में अंतर होगा। और कई रचनाकारों की भाषा आपको बहुत ही प्रभावशाली नजर आएगी और उसमें आपको विराम चिन्हों का, कारक चिन्हों का प्रयोग भी दिखाई देगा। तो भाषा के जितने भी आयाम हैं उनको आप गद्य की रचनाओं में देख सकते हैं। तीसरा तत्व तो शैली है। शैली का अर्थ होता है कहने का ढंग।
जी।
जैसे आपने अभी सुना विभिन्न विधाओं के बारे में आपको मैंने बताया, तो इन विभिन्न विधाओं की सृष्टि कैसे हुई, इसके पीछे कारण यह है कि हर रचनाकार का कहने का अपना ढंग होता है। वह किसी भी बात को अनेक तरीके से कह सकता है, इसीलिए विभिन्न विधाओं की रचना हुई और साथ ही अलग अलग रचनाओं में अलग अलग शैलियों का दर्शन हमें होता है। जैसे वर्णनात्मक शैली एक होती है, उसमें लक्ष्य होता है कि किसी घटना का वर्णन किया जाए। इस शैली में कल्पना की उड़ान कम होती है, मुख्य रूप से रचनाकार शब्द चित्र खींचने का प्रयास करता है। जैसे आखिरी चट्टान पाठ है जिसमें आप देखेंगे कि कन्याकुमारी का पूरा दृश्य आपके आंखों के सामने आ जाएगा, इस तरह से शब्द चित्र खींचा गया है। दूसरी शैली विचारात्मक शैली होती है। इस शैली में तर्कों के द्वारा रचनाकार कुछ दृष्टियां आपके मन में भर देता है, कुछ अलग तरह का विचार आपके मन में पैदा होता है और इसकी भाषा कहीं कहीं आपको कठिन भी लगेगी। जैसे कुटज निबंध है हजारीप्रसाद द्विवेदी का या रामचंद्र शुक्ल का क्रोध निबंध है, इनमें आपको भाषा क्लिष्ट लगेगी, लेकिन उसमें विचारों का ताना बाना आपको नजर आएगा जिससे कि हम आनंदित हो जाते हैं। तीसरी कथात्मक शैली आप देख सकते हैं, जिसमें कहानी के माध्यम से अपनी बात कही जाती है और इसमें चिंतन मनन का प्राधान्य नहीं होता, बल्कि सामान्य रूप से कहानी के माध्यम से रचनाकार अपनी बात को सामने लाते हैं।
जी।
जैसे दो कलाकार आप कहानी पढ़ेंगे, उसमें दो पात्रों के माध्यम से, चित्रा और अरुणा के माध्यम से, रचनाकार ने यह बताने की कोशिश की है कि चित्र बनाने की कला एक महत्वपूर्ण कला है, उसका जीवन में महत्व है, लेकिन मानव सेवा उससे भी बड़ी कला है। तो इस तरह से कथात्मक रूप में बातों को प्रस्तुत किया जाता है कहानियों में। एक अन्य शैली भावात्मक शैली है। इस शैली में शिक्षार्थियों हमारे मन की खुशी, करुणा, क्रोध, विस्मय, ये सारे जो भाव हैं वह प्रकट किए जाते हैं। इनमें अगर आप देखें तो अलंकारों का भी काफी प्रयोग किया जाता है और कल्पना का प्राधान्य बहुत ज्यादा होता है। इसमें एक आगे हम बढ़ें तो एक और प्रश्न उठता है कि गद्य का जो हम पठन करें तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखें। इसमें तीन चार बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पढ़ते समय सबसे पहली बात है कि किसी रचनाकार की रचना जब आप पढ़ें तो उसकी भूमिका और परिचय जरूर जान लें, अर्थात रचनाकार के बारे में जानना महत्वपूर्ण होगा। उसकी जो रचनात्मक क्षमता है, उसकी जो कलात्मक विशेषताएं हैं, अगर आप उसको जानते हैं तो उसी संदर्भ में आप रचना को समझ सकते हैं और रचना की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि विभिन्न अनुच्छेदों को आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि विभिन्न अनुच्छेदों में अलग अलग बातें कही जाती हैं। जैसे आप मान लीजिए निबंध पढ़ रहे हैं, अगर कुटज निबंध आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि विभिन्न अनुच्छेदों में अलग अलग बातें कही जाती हैं। इसके अलावा तीसरी बात है कि आप उसमें विराम चिन्हों पर रुक रुक कर आगे बढ़ें और उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि आप अर्थ को समझ सकें। और अगली बात है कि आप पढ़ते समय बीच में सोचे नहीं, उससे आपका क्रम बिगड़ जाएगा। इसलिए एक समान गति में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करना चाहूंगा और वह है अपठित गद्य को कैसे पढ़ें। इस पर आपको 6 अंक का प्रश्न भी आता है। अपठित अंश का मतलब होता है कि जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, बाहर का कोई गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसमें शिक्षार्थियों 5 महत्वपूर्ण बातें हैं: पढ़ने की गति, चिंतन मनन, विचारों का बोध, अंतर्निहित उद्देश्यों को समझना और शब्दकोश देखने की आदत डालना। मैं संक्षेप में इसे बताऊंगा। पढ़ने की गति का मतलब होता है, जैसा मैंने बताया, कि आप पूरा ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करें और एक समान गति में पढ़ें और जहां तक संभव हो आप किसी भाव को छोड़े नहीं, क्योंकि किसी भी रचना में एक क्रमबद्धता होती है। चिंतन मनन का जहां तक सवाल है, जब आप पढ़ रहे हों तो उसके साथ साथ आपके मन में चिंतन मनन भी होना चाहिए, अर्थात उसको समझते हुए चलें, तभी उस रचना का आप आनंद उठा सकेंगे। मान लीजिए आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, अगर कहानी को आप पूरे मनोयोग से नहीं पढ़ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। और तीसरी बात जो मैंने बताई कि विचारों का बोध, हर रचना कुछ विचारों को लेकर आती है, कुछ नई दृष्टि को लेकर आती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और चौथी बात है अंतर्निहित उद्देश्यों को समझना। हर रचना का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को लेकर ही रचनाकार आगे बढ़ता है, तो उस केंद्रीय भाव को समझना बहुत जरूरी है। और एक तत्व मैंने बताया, शब्दकोश देखने की आदत। आजकल के विद्यार्थियों में शब्दकोश देखने की आदत छूट गई है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग शब्दकोश जरूर देखें, क्योंकि उससे आपका शब्द भंडार बढ़ेगा और आप अधिक से अधिक शब्दों को समझ सकेंगे, उसके अर्थ को समझ सकेंगे और अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। तो इस तरह से मैंने गद्य कैसे पढ़ें उसके बारे में मुख्य बातें आपके सामने रखी हैं।